जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopal Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai, Radha Ramana Hari, Govinda Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai, Radha Ramana Hari, Govinda Jai Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Jaya Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jai Jagannath Jaya Jagannath Baladeva जय सुभद्रा। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सतेष्ठ वाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरहन परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवे प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया है, इंद्रदेव का मान भंग हो चुका है, इंद्रदेव को पछतावा हो रहा है, इंद्रदेव आकर क्षमा याचना भी कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति भी कर चुके हैं, साथ में सुरभि देवी आई हैं गोलोक से। इंद्रदेव श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, उसके बाद श्री कृष्ण उनको थोड़े दो अच्छे बातें सुनाते हैं, अच्छे उपदेश देते हैं। माता सुरभि भी उनसे निवेदन करती है कि हे कृष्ण, आप ब्राह्मणों के, गायों के, देवों के और भक्तों के इंद्र बनिए, क्योंकि आप ही वास्तविक इंद्र हैं, आप हमारे राजा हैं। हमने तो इंद्र को हमारा राजा मान लिया था, क्योंकि इंद्र देवराज हैं और मैं देवलोक से आई हूं, तो इंद्रदेव की जिम्मेदारी थी कि वो हम सबकी रक्षा करे, परंतु हमारे वंशजों की रक्षा करने के बजाय इंद्र ने हत्या करने का प्रयास किया मेरे वंशजों का, और वास्तव में आप ही ने आके इन सबको बचाया है, आप ही ने रक्षा प्रदान किया है, इसलिए आप ही वास्तविक इंद्र हैं और आप विश्वात्मन हैं, सारे विश्व के आत्मा हैं, विश्व संभव, आपसे ही विश्व का उद्गम होता है, इंद्र के भी इंद्र वास्तव में आप हैं, ये इंद्र तो नकली इंद्र है, सच्चे इंद्र आप हैं। और उन्होंने श्री कृष्ण से स्वीकार किया कि अब हम आपका अभिषेक करना चाहते हैं, राज्याभिषेक, आपको इंद्र घोषित करना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने स्वीकार की इस प्रस्ताव को। इंद्रदेव ने अभिषेक के बाद श्री कृष्ण को गोविंद नाम प्रदान किया। हालांकि शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण का और एक नाम है दाशार्ह, जो राजा दशार्ह के वंश में आते हैं। तो इंद्रदेव ने सोचा कि हालांकि ये दाशार्ह हैं, चंद्रवंश में आते हैं, बड़े बड़े राजाओं में के वंश में आते हैं, फिर भी ये ग्वालबाल होना पसंद करते हैं, इसलिए इनका नाम होना चाहिए गोविंद। तो गोविंद के तीन अर्थ बतलाए थे कल। कौन से तीन अर्थ हैं गोविंद के? एक है जो गायों की रक्षा करते हैं, गायों को आनंद प्रदान करते हैं। दूसरा, जो इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, इंद्रियों की रक्षा करते हैं, इंद्रियों का पोषण करते हैं, कैसे? उनको अपनी ओर आकर्षित करके, तो वो है गोविंद। और तीसरा, गो का अर्थ ये भी है स्वर्ग। तो जो स्वर्ग लोक के वास्तविक भोक्ता है, वास्तविक राजा है, वो श्री कृष्ण है। हालांकि श्री कृष्ण किसी भी भौतिक वस्तु या स्थान का भोग नहीं करते हैं। स्वर्ग लोक तो एक भौतिक स्थान है, भौतिक जगत का एक भाग है, फिर भी ये सारी सृष्टि, भौतिक सृष्टि, ये तो श्री कृष्ण के ही वैकुंठ जगत में अंतर्गत आता है। वैकुंठ जगत के आकाश में एक छोटे से कोने में एक बादल के समान ये भौतिक सृष्टि है, तो ये भौतिक सृष्टि भी तो भगवान के राज्य में ही आती है। तो वास्तव में श्री कृष्ण ही राजा हैं। और इसके बाद बड़े धूमधाम से अभिषेक श्री कृष्ण का हुआ। कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू में बड़े विस्तार से इस अभिषेक के महोत्सव का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी अभिषेक हुआ, समस्त देवतागण वहां आप उपस्थित थे, ऋषियां उपस्थित थे, और जब ये बड़ा अनुष्ठान हो रहा था तो श्री कृष्ण बड़े गंभीर स्वरूप धारण करके उस अभिषेक को स्वीकार कर रहे थे। उनके मन में ये विचार था कि अरे ये सब क्या है, ये सब अभिषेक और ये राजा, ये राज्य अभिषेक वगैरह क्या है, मैं तो वहां गोपों के साथ, गोपियों के साथ सब लीला करना चाहता हूँ वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में श्री कृष्ण कौन से भाव में होते हैं, ऐश्वर्य भाव में नहीं होते हैं। वृंदावन में न तो ब्रजवासी उनको भगवान समझ के जानते हैं, और न ही भगवान जानते हुए भी इसकी परवाह करते हैं कि ये भगवान है। ऐश्वर्य ज्ञान होते हुए भी या नहीं होते हुए भी उनके माधुर्य प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण ऐसे मधुर लीलाओं को अधिक पसंद करते हैं। ऐश्वर्य लीला से भक्तों को अवश्य आनंद आता होगा, विशेष करके जो इस भाव में हैं। भगवान भी ऐसे नारायण स्वरूप में, ऐसे ऐश्वर्य युक्त उपासना और सेवा को स्वीकार अवश्य करते हैं, क्योंकि जैसे हम पहले भी सुन चुके हैं, रूप भेदात अवाप्नोति ध्यान भेदात तथा अच्युत, कि भक्तों के ध्यान भेद या रस भेद के आधार पर भगवान श्री कृष्ण के रूप भेद होते हैं, और ऐसे अलग अलग रसों में वो उनके अनगिनत भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। परंतु वृंदावन में आकर श्री कृष्ण तो केवल एक ग्वालबाल बनना चाहते हैं और अपने भक्तों के साथ लीला करना चाहते हैं, रमण करना चाहते हैं। यहां वो भगवान के भाव में नहीं आए हैं। जब वो भगवान जैसे कार्य करते भी हैं, जैसे कि गोवर्धन पर्वत को धारण करना, फिर भी वृंदावन के निवासियों का प्रेम ऐश्वर्य युक्त नहीं होता है, उनका माधुर्य भाव जो है वो बना रहता है, और श्री कृष्ण ऐसा ही चाहते हैं। क्योंकि ऐश्वर्य भाव यदि ब्रजवासियों में आ जाता तो मजा किरकिरा हो जाता, सारा प्रेम उस शुद्ध प्रेम के अंदर, उस मधुर प्रेम के अंदर ऐश्वर्य भाव आने से भगवान को इतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर सारे देवतागण आए थे, सारे ऋषि मुनि आए थे, जितने भी वैकुंठ के भक्त हैं वो सब आए थे। बड़े धूमधाम से, बड़े ठाट से श्री कृष्ण का अभिषेक हो रहा था। अप्सरा नृत्य कर रहे थे, कर रही थी आसमान में, विद्याधर चारण आदि सिद्ध सब ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों से सब आए थे। बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ था। तो ये तो पूरा ऐश्वर्य भाव में था। भगवान श्री कृष्ण को इतना पसंद नहीं आया, फिर भी ये सब भी इनके भक्त ही थे ना, इनकी सेवा भी तो स्वीकार करनी है, तो गंभीर बैठे चुपचाप और इस सेवा को स्वीकार करते रहे। परंतु साथ साथ ये विचार अवश्य कर रहे थे कि अरे मेरे गोप मित्र भी, सखा क्या कर रहे होंगे, अभी गोपियां क्या कर रही होंगी, मेरे गाय कहाँ है, मेरे बछड़े कहाँ है। तो उनका भाव वृंदावन के भाव में मग्न था, और अपने भक्तों को अपने सेवा में लगाने के लिए उनके ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने ये अभिषेक स्वीकार किया। कवि कर्णपुर बताते हैं कि इंद्रदेव ने जब अभिषेक आरंभ किया तो उस समय वहां पर बड़े बड़े देवता जितने भी हैं वो सब आए थे। ब्रह्मा जी उपस्थित थे, शिव जी थे, माता पार्वती थी, चंद्र, वरुण, वायु सब आए। और जैसे अभिषेक शुरू हो रहा था तो वरुण देव ने एक छत्री भगवान के ऊपर पकड़ के रख ली ताकि भगवान को छाया मिल जाए। वायुदेव चामर सेवा कर रहे थे और भगवान का दर्शन करते करते जब वो चामर की सेवा कर रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो इतने भाव विभोर हो गए थे प्रेम से। उधर भगवान श्री कृष्ण के शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये चार भी प्रकट हुए उनकी सेवा के लिए। भगवान के धाम में हर वस्तु चेतन होता है, वहां कोई वस्तु मृत नहीं होता, जड़ नहीं होता, जैसे कि यहाँ इस जगत में है। यहाँ जैसी दीवार है ये मृत है, ये चेतन नहीं है। यदि यहाँ कोई शंख लिया जाए, कोई गदा लिया जाए, कोई कमल पुष्प लिया जाए तो ये मृत है, परंतु भगवान के जो शंख, चक्र, गदा, पद्म है ये चेतन है, इनका भी व्यक्तित्व है। तो भगवान श्री कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र है उन्होंने क्या किया कि सब जगह दीप प्रज्वलित कर दिए और दीपों की सेवा में वो यहाँ दीपों के रूप में वो यहाँ सेवा कर रहे थे। जो कमल पुष्प है, कमल पुष्प ने तरह तरह के छत्र बनाए, सुंदर सफेद रंग के छत्र, ताकि श्री कृष्ण को अच्छी तरह से छाया यहाँ लग सके। भगवान का जो गदा है जिसका नाम है कौमोदकी, उन्होंने अपने आप को रत्नों से युक्त खम्भों के रूप में परिवर्तित कर दिया ताकि एक आलीशान, एक राज दरबार का एक माहौल बन जाए। भगवान का जो पांचजन्य शंख है वो भी बजने लगा और पवित्र मंगलमय ध्वनि को गूंजने लगा। वहां पर ब्रह्मा जी ने कहा, आप सब आइए, अपनी अपनी सेवा प्रदान कीजिए, दीजिए, भगवान को अर्पण कीजिए। तो जितने भी वन देवी हैं, वन देव हैं, जितने भी मूर्तिमान स्वरूप हैं, औषधों के, वृक्षों के, जितने भी देवता थे, एक के बाद एक आके अपने भेंट अर्पण करने लगे भगवान श्री कृष्ण को। पर्वत हैं वो भी आए, नदियां हैं, समुद्र हैं। इसका क्या मतलब है कि नदियां आई, समुद्र आए? देखिए, हर एक नदी, हर एक समुद्र, हर एक पर्वत आदि के पीछे एक अधिष्ठाता कोई व्यक्ति होते हैं, जैसे हिमवान हिमालय के अधिष्ठाता हैं, वरुण देव समुद्र के अधिष्ठाता देव हैं। तो जितने भी ऐसे देव देवियां थीं, वो सब वहां प्रकट हुई अपने अपने भेंट भगवान को अर्पण करने के लिए। भगवान इन सबको गंभीर स्वरूप से स्वीकार करते रहे। बड़े आनंद का माहौल वहां पे निर्माण हो गया था। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं भागवत के इन श्लोकों में कि कितने कितने लोग आए, कैसे माहौल वहां बन गया था। अंततः ऐसी बहुत सारी सेवा होने के बाद सारे देवतागण एक एक करके चले गए वापस। सभी लोग बड़े संतुष्ट हुए, वातावरण जो है बड़े आनंद से भरा हुआ था, सारे ब्रह्मांड में आनंद का वातावरण फैल गया, केवल यहाँ वृंदावन में नहीं, क्योंकि सारे ब्रह्मांड से, सारे देवलोक से, अन्य लोकों से आए थे। देवलोक के ऊपर भी जो महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक है, वहां से भी सब आए थे। चतुष्कुमार आए थे, ध्रुव महाराज आए थे नीचे सुतल लोक से, प्रहलाद महाराज आए थे, ध्रुव महाराज, क्षमा कीजिए, ध्रुव लोक से आए थे, बलि महाराज, उनके जितने भी साथी हैं वो सब आए थे। बहुत बड़ी संख्या में वहाँ एक अनुष्ठान हुआ, भक्तों की भीड़ हुई थी वहाँ पर, और ऐसे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होकर वहां से चले गए। जब सारे देवतागण चले गए तो केवल इंद्र और सुरभि देवी रह गईं। पुनः अंतिम बार इंद्र देव ने श्री कृष्ण के सामने कृपा याचना की और फिर अपने धाम में चले गए। तो यहाँ सुनते हैं कि शुकदेव गोस्वामी कैसे वर्णन करते हैं। गोविंद इति च अभ्यधात, कि इंद्रदेव ने गोविंद कह के श्री कृष्ण को संबोधित किया और कहा कि इसके बाद आपके सारे भक्त आपको गोविंद कह के ही पुकारेंगे। ये नाम भगवान का बड़ा प्रसिद्ध है। विष्णु पुराण में ये श्लोक है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं नमन करता हूं उस ब्राह्मणों के संस्कृति के देव को जो जिनका नाम कृष्ण है और जो गाय और ब्राह्मणों के हित के लिए कार्य करते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय, और सारे जगत का हित चाहते हैं। गोविंदाय नमो नमः, ऐसे श्री कृष्ण जिनका नाम गोविंद है उनको मैं बारंबार नमन करता हूँ। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय जब रथ के सामने होते थे भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया करते थे तो उस समय अनेक श्लोक बोला करते थे। उनमें से ये भी एक श्लोक है जो वो बार बार उच्चारण करते थे भगवान जगन्नाथ को देखकर, जो कि श्री कृष्ण से अभिन्न है। फिर आगे शुकदेव जी कहते हैं इस अध्याय के अंत में,
तत्रागतास्तुं बुरुनारदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्धचारणाः जगुर्यशो लोकमलापहं हरेः सुरांगना सन्ननृतुर् मुदान्विताः।
तत्र आगताः, वहां पर अर्थात गोवर्धन में जहाँ की भगवान का राज्य अभिषेक हो रहा था वहां पर आए। कौन कौन आए? तुम्बुरु नारद आदयः। तुम्बुरु एक गंधर्व है, गंधर्व लोक के निवासी, बहुत मधुर गान कर सकते हैं। ऐसे जो ऊपरी लोक हैं उनके जो निवासी हैं जन्म से ही स्वाभाविक रूप से उनके अंदर कई शक्तियां आदि मिल जाती हैं उनको। जैसे सिद्ध लोक के जो निवासी हैं जन्म से ही उनको सारे योग की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। प्रयास नहीं करना होता, योगाभ्यास नहीं करना होता, तपस्या नहीं करनी होती है उनको। उसी प्रकार से गंधर्व लोक के जो निवासी हैं वो बहुत मीठा गा सकते हैं, और इसलिए इस दुनिया में भी यदि कोई बहुत मीठा गाता है तो हम कहते हैं ये तो गंधर्व की तरह गाता है ना। कई ऐसे शास्त्रीय संगीत में निपुण व्यक्ति हैं, संगीतकार हैं, जिनको गंधर्व नाम दिया जाता है। ऐसी परंपरा है गंधर्वों की। आप में से जो पहले शास्त्रीय संगीत सुना करते थे आपने नाम सब सुने होंगे। तो ये गंधर्व, तो तुम्बुरु उनमें से एक प्रमुख है। फिर नारद जी भी वहां पर आए। गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणाह, तो ये सब अलग अलग लोकों से निवासी आए थे यहाँ पर। तो केवल अंतरराष्ट्रीय संघटना नहीं हुई है, सारे ब्रह्मांड के की संघटना यहाँ पर सम्मेलन हुआ। यहाँ सभी लोग आए और तुरंत चले आए यहाँ पर। जगुर यशो लोक मलापहम हरे है, और फिर वो क्या करने लगे? जगु हो, गान करने लगे। किस चीज का गान करने लगे? हरे है यशो, भगवान श्री हरि के यश का गान करने लगे। और हरि के गुण क्या है? हरि के गुणगान का लक्षण क्या है या लाभ क्या है? लोक मल अपहम, के سارے دنیا کے مل نشٹ ہو سکتے ہیں یدی شری کرشن کا گنگان ہو. ملاپہم, یہ ملاپہم شبد سے آپ کو کچھ یاد آتا ہے؟ آپ سب بیلگام کے نواسی ہیں. ملاپہاری, یہ ملا پربھا کر دیا انہوں نے اسنام کو, مل کی پربھا, کوئی مطلب ہوتا ہے یہ پتا نہیں, الٹا ہی ارتھ ہو جاتا ہے. بلکہ مل کی پربھا ہے, نہیں مل کا اپہرن کرنے والی. اپہا, اپہا مطلب ہرن کر لینا, ہا مطلب نشٹ کرنا یا ہر لینا. تو ملاپہم, تو ہری کا گنگان بھی ایسا ہی ہے. ملاپہم, ہمارے ہردے کے اندر جتنے بھی کلمش ہیں وہ سب نشٹ ہو جاتے ہیں. یسیام ویشویمانایام کرشنے پرم پورشے بھکتر اتپدیتے پنسہ شوک موہ بھیا پہا. پھر سے یہی شبد آیا, جب ہم شری کرشن کے بارے میں سنتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں. کرشن کون ہے؟ وہ پرم پورش ہے. پرم پورش شری کرشن کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں تو بھکتر اتپدیتے پنسہ, ہمارے ہردے میں بھکتی کا ادے ہوتا ہے, ساتھ ساتھ میں شوک موہ اور بھے ان چیزوں کا ناش ہوتا ہے اور ہمارے جیون میں واسطو میں بھکتی کا آنند پرکٹ ہو جاتا ہے. ایوم پرسن منسو بھگوت بھکتی یوگتہ, تو بھگوان کی بھکتی کرنے سے سبھی کا چت پرسن ہو جاتا ہے. تو ہری کا گنگان کرنے سے سارے جگت کا کلیان ہوتا ہے. سارے جگت میں جتنا بھی کلمش ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ ایک جگہ ہم بیٹھے یہاں گنگان کر رہے ہیں شری کرشن کا, کیرتن کرتے ہیں, کتھا کرتے ہیں, سیوا کرتے ہیں, درشن کرتے ہیں, بھگوان کی سیوا ہوتی ہے, تو ایسے سیوا کتھا شرون کیرتن آدی کا لابھ کیول ان لوگوں تک سیمت نہیں ہوتا ہے جو مندر میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو مندر میں آ کے بیٹھے ہیں ان کا لابھ اوشی ہوتا ہے, پرنتو یہ واتاورن پھیل جاتا ہے, اس کا وستار ہوتا ہے. اور جہاں بھی کرشن کتھا ہوتی ہے اس کے کارن سارے جگت کا کلیان ہوتا ہے. تو کبھی کبھی یہ پرشن نرمان ہوتا ہے کہ اتنا پاپ جگت میں ہو رہا ہے, یہ ٹکا ہوا ہے کیسے یہ جگت ابھی تک؟ آپ جیسے جیسے خبریں سنیں گے کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے, آپ نے انوبھو کی بھی کیا ہے دنیا کا کہ کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پر سارے جگت میں, کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں, کیا کاریہ کرتے ہیں, کیا کھاتے ہیں پیتے ہیں, کیسے ان کا ویوہار ہوتا ہے, پھر ہم سوچتے ہیں کہ جگت ٹک کیسے رہا ہے ابھی تک, ابھی تک ختم کیسے نہیں ہوا. تھوڑے دن پہلے ہی ہم پڑھ رہے تھے ایک لیکھ کہ افریقہ کے ایک دیش میں انہوں نے چتر دیا تھا کہ جیسے یہاں پر ہم لوگ کسی وشیش دن پر کوئی وشیش کھادیہ پدارتھ سویکار کرنا چاہتے ہیں, جیسے شری کھنڈ ہو یا کچھ ہو وشیش دنوں پر, ویسے وہاں ان کے وشیش ایک چیز ہے, چوہے. چوہوں کو کھاتے ہیں. اور ایسے ایک بڑے سولی پر وہ چوہوں کو ٹنگا کے رکھتے ہیں, پکڑتے ہیں, ان کو بازار میں بیچتے ہیں, بہت ڈیمانڈ ہوتا ہے, بہت جلدی بک جاتا ہے اور اسے وشیش بھوجن مانتے ہیں. لوگ کیسے جی رہے ہیں, کیسے ہم سوچنے کے بارے میں ہی من میں کیسے ایک وچتر کچھ بھاو آ جاتا ہے کہ کوئی کھا سکتا ہے چوہا؟ پاس میں بھی آئے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, ہے نا. پاس میں یہاں سے چوہا گزرا, وچار کیجئے کہ ابھی اچانک کوئی چوہا آیا اور بیچ میں یہاں سے چلا گیا تو کیا ہوگا یہاں حل؟ سبھی لوگ ہائے ہائے کر کے اٹھ جائیں گے, کتھا کو بھول جائیں گے. چوہے کو دیکھنے ماتر سے یہ ایک بھاونا من میں ہوتی ہے, یہ لوگ کھاتے ہیں, لوگ کیا کیا کھا رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے جگت میں, کلپنا کے باہر ہے. میں یہ نشچت کہہ سکتا ہوں کہ یہاں ہم میں سے جو بھی بیٹھے ہیں हमने अभी तक पूरी तरह से ये जानकारी हमें नहीं है कि जगत में क्या क्या चल रहा है। हम तो बहुत मासूम हैं भगवान की कृपा से, हम सब इतना हमने दुनिया को नहीं देखा। हालांकि आप में से बहुत लोग बहुत अनुभवी हैं, फिर भी आपने ऐसे कई चीजें ना हमने भी देखी होंगी जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जैसे आपने कभी सोचा होगा कि लोग चूहे खाते हैं रोज, किस प्रकार से लोग एक दूसरे की हत्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो कैसे टिका हुआ है ये, क्योंकि थोड़े बहुत भक्त तो हैं दुनिया में और इतिहास में साधु संत रहे हैं जिनकी तपस्या के बल पर, जिनके भजन कीर्तन पर, जो थोड़ा बहुत भी गुणगान भगवान का हो रहा है पृथ्वी लोक में, उसके कारण ये जगत टिका हुआ है अभी, नहीं तो कब का नष्ट होना था। तो हमें इस एक छोटे से सत्संग के कार्यक्रम में जिसमें कितने 500-600 लोग होंगे, इसको इसका मूल्य या इसका प्रभाव कम नहीं समझना चाहिए। यहाँ 500 श्रद्धालु लोग एकत्र होके भगवान के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सारे ब्रह्मांड का माहौल उस समय कैसे आनंद से भर गया था, क्योंकि एक जगह वृंदावन में श्री कृष्ण का राज्याभिषेक हो रहा था, बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। हम सबका अनुभव है कि जब जन्माष्टमी महोत्सव होती है, यहाँ पर या रथ यात्रा का महोत्सव होता है, एक कैसे उत्सव का माहौल सारे शहर में फैल जाता है। कितने लोग आते हैं जाते हैं, यहाँ किस प्रकार का एक रंगीन और आनंद का वातावरण फैल जाता है। तो यहाँ पर जगुर यशो लोक मलाप हम हरे हे, ये सब अनेक लोगों से आके श्री हरि का गुणगान कर रहे थे। सुर अंगना सन्न नृत्युर मुदान अन्विता, कि सुर अंगना मतलब देवताओं की जो पत्नियां थी, देवियां थी, वो भी आई, बड़े आनंद से वो नृत्य कर रही थी, अपने आनंद को व्यक्त कर रही थी नृत्य के माध्यम से। वास्तव में जो भी संस्कृति है ना, संस्कृति में कैसे संगीत होता है, नृत्य होता है, नाटक होते हैं, वैदिक संस्कृति में ये सारी चीजें भगवान के ऊपर आधारित होती हैं। आज भी आप देखिए जितने भी भारत में नृत्य हैं, जैसे भरतनाट्यम समझिए, ओडिसी समझिए, मणिपुरी नृत्य समझिए, ये सब भगवत कथा पर, भगवत लीलाओं पर आधारित है। मणिपुर जैसे प्रांत में भी जो उनके मणिपुरी नृत्य राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है, पूरी तरह से कृष्ण लीला पर, और विशेष करके गोपियों के साथ जो कृष्ण की लीला है। तो मणिपुर में संस्कृति ऐसी है पहले से, कलयुग के प्रभाव से भी बहुत फर्क पड़ा है, परंतु अनेक वर्षों से वो राधा कृष्ण का गुणगान सुनकर घर में बच्चे ऐसे जन्म मतलब बड़े होते हैं। तो नृत्य हो, जो जगन्नाथपुरी में देवदासियों की परंपरा हुई, अभी उसका बुरा नाम हो गया है, परंतु ये क्या हुआ, ये केवल श्री जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए ऐसे ये सब शुरू हुआ। भगवान जगन्नाथ ने स्वयं चाहा कि मैं ऐसे चाहता हूं। संगीत नारद मुनि ने भागवत के अनुसार सारे गम पधनी इन सप्त स्वरों का प्रयोग किया भगवान का गुणगान करने के लिए। तो इसलिए हम जो भी यहाँ जो भी संगीत होता है, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो सब भगवान के ऊपर निर्धारित होने चाहिए। अन्यथा यदि भगवान के लिए नहीं करेंगे तो भौतिक चीज के लिए करेंगे, इंद्र तृप्ति के लिए करेंगे। कई ऐसे धर्म हैं अभी आधुनिक काल में, ऐसे धर्म हैं जो कहते हैं कि संगीत नहीं होना चाहिए, पाप है, नृत्य नहीं होना चाहिए, कोई नाटक नहीं होनी चाहिए, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, इसको पाप समझते हैं, वो बहुत ज्यादा कट्टर है। इसलिए क्या होता है कि वैसा धर्म सूखा हो जाता है, उसमें रस नहीं रहता, रसहीन हो जाता है ऐसा धर्म। परंतु भगवान चाहते हैं कि भक्ति का मार्ग जो है रसमय हो जाए, आनंद हो जाए ऐसे मार्ग में, प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम सुसुखम करतुम अव्ययम। इस धर्म भागवत धर्म का पालन करते करते व्यक्ति को मुदित अवस्था में होना चाहिए, जैसे यहाँ वर्णन किया है मुदान्विताः मुद अन्विताः। नृत्य करके भगवान के संतुष्टि के लिए ये सारे देवियां बड़े आनंद का अनुभव कर रही थी। आजकल के नृत्यों के समान नहीं है जो आजकल सिनेमाओं के माध्यम से नृत्य दिखाए जाते हैं। ये तो नृत्य क्या, ये तो नरक के लिए द्वार खोलने की बात है बस। और इसको बहुत आजकल हमारी युवा पीढ़ी इसके बहुत पीछे पड़ी हुई है। तो इस प्रकार से ऊपर के लोगों से सब निवासी आए थे। आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तम तुष्टवुर देव निकाय केतवो। तो उनकी प्रशंसा करने के लिए तुष्टवुर देव निकाय केतवो, देवों में से जितने भी महत्वपूर्ण देव थे वो यहाँ पर आए। क्या करने के लिए? श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए। किसी ने नहीं कहा मुझे दूसरा कोई काम है, कृष्ण का गुणगान होना है ना तो सबको उपस्थित होना है। महत्वपूर्ण देवताओं ने नहीं कहा कि मुझे कोई और काम था, मैं वहां गया था, इस काम से दूसरी जगह गया था, नहीं, सभी उपस्थित हुए क्योंकि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम किया जा रहा था, वो क्या है? श्री कृष्ण का गुणगान। तो श्री कृष्ण के गुणगान के लिए वो आए। और आगे शुकदेव कहते हैं, यह विकारम चाद्भुत पुष्प वृष्टि भी। फिर देवताओं ने ऊपर से पुष्पों की वृष्टि की, वर्षा की श्री कृष्ण के ऊपर। तो केवल दूध गंगा जल आदि का अभिषेक नहीं हुआ, पुष्पों का अभिषेक भी होता गया। लोकाः पराम निर्वृतिम आप्नुवंस त्रयो। लोकाः त्रयो, ये तीनों लोक भू भुव स्वः पराम निर्वृतिम आप्नुवंस, उनको परम सुख का अनुभव हुआ। किनको? तीनों लोगों को। सभी लोग बड़े प्रसन्न थे सब जगह। जिस प्रकार से जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो न जाने क्यों सबको लगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है अंदर से। चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए फाल्गुन पूर्णिमा में, तो उस समय ग्रहण था, लोग गंगा में स्नान करने के लिए आए थे, तो लोगों को पता नहीं चला कि क्यों मुझे इतनी खुशी हो रही है। प्रसन्नता का माहौल सब जगह फैल गया था। कभी कभी ऐसे भी होता है कि सभी को लगता है थोड़ा बहुत मुझे, मैं उदास क्यों हो रहा हूँ, ऐसा लगता है कभी कभी, अचानक एक उदासीपन आ जाता है, क्या है? अधिकतर तो हमारे मन के वेग है ये, परंतु कभी कभी जब अशुभ सब चीजें वातावरण फैल जाता है तो सबको उदास कर देता है। जब ऐसे दिव्य घटनाएं होती हैं, दिव्य अनुष्ठान हो जाते हैं जो कि कृष्ण के गुणगान पर आधारित होते हैं, तो सब जगह सभी लोग मुदित अवस्था में रहते हैं। बिना जाने हुए भी वो प्रसन्नता को अनुभव करते हैं। जैसे यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि तीनों लोकों में सभी लोग प्रसन्न थे। गावस तदा गाम अनयम पयोद्रुताम। और उस समय जो गाय थे वो भरपूर दूध छोड़ने लगे पृथ्वी के ऊपर, और मानो कि पृथ्वी के ऊपर दूध का बाढ़ होने लगा। सारे पृथ्वी जो मिट्टी है वो गीली हो गई दूध से, गायों ने इतना दूध दिया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज के समय गायों की रक्षा इतनी अच्छी तरह से होती थी, वैदिक संस्कृति में सभ्यता में हुआ करती थी ऐसे, आज की तरह नहीं, कि गाय इतने प्रसन्न हुआ करते थे। उनको कोई डर नहीं था कि कोई हमारी हत्या करने वाला है, उनको पूरा सम्मान दिया जाता था, लोग उनसे प्रेम करते थे, उनका प्रति आदर सत्कार की भावना रखते थे, उनकी पूजा करते थे। तो गाय इतना प्रसन्न थे महाराज युधिष्ठिर के समय कि बिना दोहन किए हुए वो दूध देते थे। और पृथ्वी जो है, जो गोचर भूमिया जो है, गोचर भूमि, वो सिर्फ गीली रहती थी बारिश से नहीं, दूध से। कल्पना कीजिए, आजकल गाय का दूध भी नहीं मिलता है, भैंस का दूध ज्यादा महंगा है, भैंस के दूध से चाय जो अच्छा बनता है ना, और गाय के दूध, गाय का दूध प्राय नहीं मिलता है आजकल, कहीं नहीं मिलता, बिरला ही है वहां से कुछ मिलता होगा। और उत्तर भारत में तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि गाय के दूध के नाम पर वो दूध नहीं और कुछ एक रासायनिक पदार्थ को, यूरिया आदि को का मिश्रण करके पानी में और थोड़े रसायनों का मिश्रण करते हैं, दूध के नाम में बेचते हैं। बम्बई में भी ऐसे भक्त बता रहे थे, वो दही जमाना चाहते थे, दही ही नहीं हो जाए दूध में, क्यों, दूध ही नहीं है दही कहां से होगा। और ये सब दूध के नाम में, घी के नाम में हम लोग ले रहे हैं जो बाजार में उपलब्ध है, बहुत बुरा हाल है। इसलिए हमें चाहिए कि भक्तों को कम से कम गायों के प्रति बहुत प्रेम की भावना होनी चाहिए, गायों की रक्षा के लिए, गायों की सेवा के लिए, ऐसे सभ्यता की स्थापना के लिए हमें बहुत प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमारे गोकुल धाम में अब वहां 35 गाय हैं, बैल हैं, बछड़े हैं, वो सब चरने जाते हैं और बड़े प्रसन्न रहते हैं। उनको पता है कि कोई हमारी हत्या नहीं करेगा, कोई हमें मारेगा नहीं, अंत तक, जीवन के अंत तक हम यहां रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो ऐसे होना चाहिए। और जब गाय प्रसन्न होते हैं तो स्वयं ही अधिक दूध प्रदान करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों ने गाय को एक दूध देने वाली मशीन समझ रखा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा गाय से खींच लेने का प्रयास करते हैं। और गाय को, गाय के खुराक में तरह तरह के रासायनिक पदार्थों को डाल देते हैं जिससे कि दूध का उत्पादन बढ़ जाए। फिर क्या होता है, एक गाय के अंदर जब ये रासायनिक पदार्थ चले जाते हैं तो दूध में भी वो रसायन चले आते हैं। फिर ये मैड काउ डिजीज, ये बहुत पहले ये था मैड काउ डिजीज, और फिर लाखों की संख्या में गायों की हत्या कर दी उन्होंने विदेशों में। क्यों? क्योंकि ये रोग जो है गायों के अंदर से मनुष्यों में पहुंच गया। परंतु मैड काउ डिजीज, ये पागल गाय की समस्या, गाय पागल नहीं है, मनुष्य पागल हो गया है कि उसने गाय को इस प्रकार का खुराक देना शुरू किया। गाय को भी अधिक दूध देने के लिए तरह तरह के इंजेक्शन आदि देते हैं। तो ऐसे सब जबरदस्ती गाय से करने से गाय भी अपना दूध रोक लेती है, अंदर नहीं देना चाहती है, प्रसन्न नहीं होती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के पास जाए, हम कहें कि महोदय हम कृष्ण जन्माष्टमी में करना चाहते हैं, तो आप कुछ दान दीजिए, तो बड़े खुशी से दे देंगे यदि वो धार्मिक हैं तो। परंतु यदि हम उनके पास जाएं, उनका गर्दन पकड़ लें, जेब में से खींचने का प्रयास करें, दे दो मुझे, तो विरोध करेगा। हो सकता है हम सफल होकर 2-5 रुपए छीन भी लें, लेकिन वो खुशी से तो देगा नहीं। दूध गाय के साथ ऐसे ही हो रहा है, जबरदस्ती गाय से हम छीनना चाहते हैं दूध, क्योंकि गाय को हम माता नहीं समझ रहे हैं। गाय को एक कृष्ण के प्रिय पशु नहीं समझ रहे हैं, एक मशीन समझ रहे हैं। इसलिए समस्या है। यदि गायों की रक्षा हमने की तो वो प्रचुर मात्रा में दूध प्रदान करेंगी, सारे मनुष्य समाज के लिए दूध की कमतरता नहीं होगी। और दूध होगा तो घी आदि सब कुछ बनेगा, सभी लोग हृष्ट पुष्ट रह जाएंगे। तो गाय और भूमि पर आधारित ये सभ्यता, ये ऐसी सभ्यता है जो टिकेगी और जिसमें मनुष्य बड़े संतुष्टि से रह सकते हैं। प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, गाय और बैलों को आप संतुष्ट रखो तो सारा मनुष्य समाज संतुष्ट रहेगा। और इसका प्रमाण हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गाय इतना दूध दे रही थी कि सारी मिट्टी जो है वो गीली हो गई थी दूध से। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, नाना रसो खाह सरितो वृक्षा आसन मधुस्रवाह अकृष्ट पचौ औषधयो गिरयो अभिभ्रम उन्मणीन नाना रस ओघाह सरितो। नदियां बहने लगी केवल पानी से नहीं, उनमें तरह तरह के ऐसे और स्वादिष्ट वस्तुएं थी जो नदी में भी बह रही थी, तो नदियां केवल पानी नहीं प्रदान कर रही थी और बहुत स्वादिष्ट वस्तुओं को भी दे रही थी। वृक्षा आसन मधुश्रवाह, वृक्षों से, वृक्ष जो है वो स्वाभाविक रूप से मधु दे रहे थे। कृष्ट पचौ औषधयो, तो बिना कृषि किए हुए जो पौधे हैं वो अनाज उत्पादन कर रहे थे, बीज हैं वो इन अनाज उत्पादन कर रहे थे, फल प्रदान कर रहे थे। जब पाप बढ़ जाता है तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जब सारे दुनिया में भक्ति का माहौल बन जाएगा तो स्वयं ही पृथ्वी माता सब चीजों को, मनुष्य के लिए जो भी आवश्यक है वो अधिक मात्रा में प्रदान करेगी, जिससे कि मनुष्य समाज में कोई किसी भी चीज की कमी या किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा। गिरयो अभिभ्रन उन मणिन, मणि जो मणि होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों में, परंतु पहाड़ों के भीतर होते हैं ये, तो खुदाई करनी पड़ती है पहाड़ों से मणि आदि रत्नों को बाहर निकालने के लिए। परंतु भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक के समय पर्वत भी इतने प्रसन्न हो गए थे कि खुदाई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये मणि आदि पर्वत के बाहर ही आ गए थे, कोई भी जाके उठा सकता था। तो ऐसे देखिए, भक्ति करने से जो समृद्धि की प्राप्ति होती है ये हमें पढ़ने लायक है, सुनने लायक है। यहाँ आजकल सारी जो भी सरकार है वो केवल अर्थव्यवस्था के ऊपर जोर दे रहे हैं, परंतु आध्यात्मिकता के ऊपर, भक्ति के ऊपर कोई जोर नहीं दे रहा है। इसलिए अर्थव्यवस्था या अर्थ विकास का प्रश्न बड़ा विकट हो गया है। आधुनिक समय में बहुत संघर्ष चल रहा है, महंगाई, तरह तरह की समस्याएं हैं, परंतु आजकल के नेता ये नहीं जानते हैं कि यदि केवल लोगों को भगवान की भक्ति में लगाया जाए तो समृद्धि तो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। भक्ति सबसे महत्वपूर्ण समृद्धि है, आध्यात्मिक समृद्धि से भौतिक समृद्धि खुद ब खुद आ जाती है, और ये इस बात की पुष्टि है भागवत में, ऐसे बताया गया कि वृंदावन में क्या हो रहा था। फिर सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णे भिषिक्त एतानि सर्वाणि कुरुनंदन निर्वैराणि अभवंस्तात् क्रूराणि अपि निसर्गतः। कृष्णे अभिषिक्त एतानि, जब कृष्ण का अभिषेक इस प्रकार से हुआ सर्वाणि सबके द्वारा, तो उस समय निर्वैराणि अभवंस्तात् क्रूराणि अपि निसर्गतः, जितने भी पशु हैं जो प्रकृति के नियम से एक दूसरे के शत्रु हैं, जो वैर करते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में जो वैर की भावना है वो खत्म हो गई। जो क्रूर पशु थे वो भी अक्रूर हो गए, सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे। देखिए क्या प्रभाव है भगवान की भक्ति का। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जा रहे थे तो झारखंड के जंगलों से गुजरते हुए गए अपने सेवक बलभद्र भट्टाचार्य के साथ, और बलभद्र भट्टाचार्य ने वृंदावन पहुंच के और पूरी पहुंच के सारे भक्तों को बताया कि उन्होंने कौन सा एक अद्भुत दृश्य देखा कि चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते करते जा रहे थे वन के भीतर से, तो जितने भी पशु थे वो सब भी संकीर्तन में शामिल होने लगे, वो भी कृष्ण प्रेम के आवेश में आ गए, वो भी हाथ ऊपर करके कीर्तन करने लगे, और प्राकृतिक जो वैर है पशुओं के बीच में वो नहीं रहा, शेर और हिरण गले लगाकर नृत्य कर रहे हैं, सभी लोग साथ में मिलजुल कर बड़े प्रेम से भगवान का नामोच्चारण कर रहे थे। बलभद्र भट्टाचार्य ने अपनी आंखों से देखा, ऐसे कविराज गोस्वामी कहते हैं, तो ये सब संभव है। तो सुखदेव गोस्वामी जो यहाँ पे कहते हैं ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ये सत्य है और ये पूरी तरह से संभव है। सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं कृष्ण की संतुष्टि होने पर। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। श्री कृष्ण को संतुष्ट करने से सारा जगत संतुष्ट हो जाएगा, यह सूत्र है सुख और शांति के लिए। परंतु इस सूत्र को लोग नहीं जानते हैं, समस्या ये है। खुशी को सब चाहते हैं, लेकिन खुशी को कैसे प्राप्त किया जाए ये नहीं जानते हैं। भगवान को केंद्र में रखे बिना सुख कैसे हो सकता है समाज में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोगों को राम राज्य चाहिए बिना राम के। राम राज्य के अंदर जो प्रजा के अंदर समृद्धि थी, संपदा थी, सुख शांति थी, दुख से मुक्त थे, किसी को बुढ़ापा नहीं था, बीमारी नहीं थी, रोग नहीं था, लोगों के बीच में झगड़े नहीं होते थे, कोई मानसिक तनाव नहीं था, ऐसी अवस्था को लोग चाहते हैं। परंतु भगवान को दूर रखकर केवल अर्थव्यवस्था से, केवल तकनीकी ज्ञान से, केवल विज्ञान से, केवल अपने भौतिक बल और बुद्धि से, केवल इंद्रिय तृप्ति से, परंतु ये संभव नहीं है। केवल श्री कृष्ण की भक्ति करने से और सारे जगत को श्री कृष्ण की भक्ति में डुबाने से ऐसी समृद्धि की अवस्था संभव है। और जब ऐसे होगा तब ये भूलोक भूलोक नहीं रहेगा, ये भू वैकुंठ हो जाएगा, भूलोक पर वैकुंठ। वास्तव में ऐसे होगा और ऐसे अवस्था में सभी लोग खुश रहेंगे। अब विचार कीजिए कि सारे दुनिया में लोग सब आप जैसे बने, कितने प्रसन्न है, सबका चेहरा देखिए कितना प्रसन्न है। एक सुझाव है आपके लिए, आपके पास में जो बैठे उनकी ओर देखिए तो कितने प्रसन्न है वो, देखिए एक दूसरे की ओर, प्रसन्न लग रहे हैं ना सब। तो यदि आप जैसे सभी बने तो सारी दुनिया की क्या हालत होगी विचार कीजिए, सारे दुनिया वैकुंठ हो जाएगी। बहुत आसान तरीका है। तो ऐसे भगवान की भक्ति को फैलाकर हम वास्तव में सारे जगत में कल्याण प्रदान हम फैला सकते हैं। परंतु आजकल उन्नति के नाम पे, विज्ञान के नाम पे लोग ऐसे वर्णनों को काल्पनिक मानते हैं, दंत कथा मानते हैं। अरे ये सब बच्चों के लिए कहानियां हैं, सब बताई गई हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि सारे शेर और हिरण साथ में मिलकर नृत्य कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ये सब बच्चों की कहानियों में होता है। तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि इस प्रकार का जो भूलोक पर वैकुंठ नहीं हो सकता, ऐसा वो लोग मानते हैं। और ऐसा नहीं मानने, ऐसा मानने के कारण वो भूलोक के ऊपर नरक बना देते हैं और इसलिए नारकी अवस्था अब पृथ्वी लोक पर हो गई है। इति गो गोकुलपतिम गोविंदम अभिश्च सह अनुज्ञातो ययौ शक्रो वृतो देवाद्भि दिवम। इति गो गोकुलपतिम गोविंदम अभिशिच्य सह। तो इंद्रदेव ने जब गायों के पति और गोकुल के पति अर्थात गौओं की देखभाल करने वालों के पति कृष्ण का अभिषेक कर दिया था, फिर अनुज्ञातः उन्होंने अनुमति ली बाहर जाने के लिए, वापस जाने के लिए। और ययौ शक्रः, फिर इंद्रदेव जिनका नाम शक्र है वो वहां से उन्होंने प्रस्थान किया। वृतः वो घिरे हुए थे देवाद फिर दिवम, अन्य देवताओं से वो घिरे हुए थे और जो भी अन्य लोकों से आए थे, गंधर्व लोक, चारण लोक, सिद्ध लोक, विद्याधर लोक आदि, सभी लोग अपने अपने लोकों में वापस चले गए। इस प्रकार से इस अध्याय का अंत होता है और गोवर्धन लीला यहाँ पर समाप्त होती है। इन चार अध्यायों में शुकदेव गोस्वामी ने हमें बहुत कुछ समझाया है, बहुत अच्छी बातें बताई हैं, हमें उनको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए और जो भी हमने सीखा है हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। अब जब इंद्रदेव को क्षमा किया भगवान श्री कृष्ण ने, तो सुखदेव गोस्वामी को याद आया कि हाँ, श्री कृष्ण ने वरुण देव को भी क्षमा किया था, वरुण देव के ऊपर भी कृपा की थी। तो किस प्रकार से वरुण के ऊपर कृपा की, अब वो आने वाले अध्याय में अर्थात 28वें अध्याय में कहने वाले हैं। गोवर्धन पूजा या अर्थात गोवर्धन को धारण, जो गोवर्धन पूजा जो श्री कृष्ण ने कराई ब्रजवासियों के द्वारा, वो अमावस्या की तिथि पर हुई थी गोवर्धन पूजा। और उसके बाद इंद्रदेव ने मूसलधार वर्षा छोड़ दी ब्रजभूमि के ऊपर, और 7 दिन कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। उसके बाद 2 दिन और बीत गए। 10वें दिन पर इंद्रदेव सुरभि को लेकर आए, और ये जो भी संवाद है, ये जो भी घटनाएं हैं, अभिषेक आदि है, ये सब दशमी की तिथि पर हुआ। और इसके बाद वाला दिन, अगला दिन जो है एकादशी की तिथि थी। एकादशी की तिथि पर नंद महाराज और अन्य ब्रजवासियों ने एकादशी के व्रत का पालन किया, उपवास रखा, और फिर द्वादशी के प्रातः काल में उपवास तोड़ने के पहले वो यमुना जी में स्नान करने के लिए गए थे। और हुआ ये कि इस दिन द्वादशी पर पारण का समय जो है वो बहुत कम था। कभी कभी ऐसे होता है, अधिकतर जो द्वादशी के समय पारण का समय होता है, अर्थात एकादशी के व्रत को छोड़ने का समय होता है, अर्थात कोई अन्न आदि स्वीकार करने का समय होता है, वो 2-3 घंटे का समय मिल जाता है। जैसे 6:10 से लेकर 10 बजे तक ऐसे कुछ समय होता है। कभी कभी ये पारण का समय जो है बहुत कम होता है। एक बार पिछले 2-3 सालों में हुआ था कि केवल 2 मिनट का पारण का समय था, तो उस 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर हमें उपवास तोड़ना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा जो व्रत है वो पूर्ण नहीं होता है, उसका लाभ हमें नहीं मिलता है। तो क्योंकि इस दिन पारण का समय बहुत छोटा था, इसलिए नंद महाराज बहुत जल्दी जल्दी उठ के यमुना में स्नान करने के लिए गए थे। आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर कहते हैं कि ऐसे गोवर्धन लीला जैसे लीलाओं का श्रवण करके जो भक्त होते हैं, जो कि भगवान की कथा सुनना पसंद करते हैं, उनकी आनंद की वृद्धि होती है और वो और भी ज्यादा सुनना चाहते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी और इसी प्रकार की कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण की कथाएं इतनी मधुर होती हैं कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस कथा के अमृत का पान करते रहता है, वो निश्चित ही शीघ्र श्री कृष्ण के चरण कमलों को गोलोक वृंदावन में प्राप्त कर लेता है। पिबंती ये भगवत आत्मन सताम कथामृतम श्रवण पुटेशु संवृतम। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथा के अमृत का पान करता है, कानों से भर भर के, श्रवण पुटेशु संभृतम, संभृतम मतलब भर के, अर्थात बहुत ही आतुरता से, बहुत ही उत्सुकता से, बहुत उत्साह से, और ऐसे जो अमृत का पान कानों से करता है, पुनंतिते विषय विदूषिताशयम, उसके अंदर जितने भी विदूषित इच्छाएं हैं भोग करने की, वो सब शुद्ध हो जाती है। पुनंतिये, पुनंतिते मतलब वो सब स्वच्छ हो जाता है उसका हृदय। व्रजन्ति तत् चरण सरोरुहांतिकम, और फिर वो जाता है व्रजन्ति, वो व्यक्ति चले जाता है, कहां चले जाता है, चरण सरोरुह, सरोरुह मतलब कमल, तो भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति वृंदावन में प्राप्त करता है। तो देखिए कितना लाभ है, न केवल जीते जी हमें आनंद प्राप्त होता है, हम सुखमय अवस्था में जीते हैं इस भौतिक जगत में रहते हुए भी, और जब जीवन का अंत होगा तब हम चले जाएंगे कृष्ण के चरणों में, गोलोक वृंदावन में, पुनः यहाँ भौतिक जगत में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी। नंद महाराज श्री कृष्ण के पिता बने हैं, श्री कृष्ण ने उनको पिता के रूप में स्वीकार किया है। अब एकादशी के दिन पर वो भी उपवास करते हैं। तो उपवास का अर्थ क्या है, थोड़े दिन पहले हम अन्य भक्तों से चर्चा कर रहे थे। उप और वास, साधारण तौर से लोग सोचते हैं कि उपवास का अर्थ है केवल भोजन नहीं लेना, ये तो है, परंतु वास्तव में उपवास का अर्थ है, यदि आप शब्द भेद करेंगे, उप मतलब पास में और वास मतलब निवास करना। किनके पास में निवास करना? भगवान के पास निवास करना। तो उपवास का अर्थ होता है कि हम अधिक ऐसे कार्य करें जिनसे कि हम भगवान की ओर निकट आ जाएं। दूसरे शब्दों में जिस दिन में हम उपवास करते हैं उस दिन में हमें बहुत ज्यादा भगवान की सेवा बढ़ानी चाहिए, भगवान की भक्ति ज्यादा करनी चाहिए जिससे कि हम भगवान के और निकट आ जाएं। और भगवत सेवा बढ़ाते बढ़ाते संसार की जो आवश्यकताएं हैं, जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, उनको कम करना चाहिए। इसलिए हम आहार भी नहीं लेते हैं या कम लेते हैं। तो ये उपवास के पीछे जो भाव होना चाहिए वो है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एकादशी दुप्पट खाशी, है ना, एकादशी के नाम पर बड़े फीस्ट हो जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, एकादशी एक नियम भंग नहीं हो रहा है तो खाए जा रहे हैं। इसका भाव हमें समझना चाहिए कि एकादशी का भाव क्या है, शारीरिक आवश्यकताओं को कम करके भगवान के ऊपर के लिए ज्यादा समय बिताना, ये सच्चा उपवास है, ये सच्ची एकादशी है। अन्यथा केवल हमारे व्रत का पालन एक औपचारिकता हो जाएगी, बस करने के लिए हम कर रहे हैं, बस हमें बताया गया नियम का पालन हो रहा है ना, बस ठीक है, परंतु नियम का पालन करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि भगवान की स्मृति बढ़ जाए हमारे अंदर, इसलिए उपवास का ये सच्चा अर्थ होता है। और एकादशी प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत के तात्पर्यों में कि यदि कोई भक्त प्रधानमंत्री बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए तो मैं उनको ये आदेश दूंगा, बल्कि अभी जो सरकार है भारत में उनको भी मैं ये निवेदन करता हूँ कि उनको राज्य इस प्रकार से चलाना चाहिए, और वो सारा जो है उनके लिए एक मार्गदर्शिका देते हैं कि ऐसे आपको राज्य को चलाना चाहिए। और उस मार्गदर्शिका में एक बात जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर एकादशी को छुट्टी आपको डिक्लेयर करना चाहिए, और उस दिन जितने भी प्रजा है भारत में, भारतवासी हैं, उन सबको भगवान की संकीर्तन में सत्संग में जाके सारा दिन बिताना चाहिए, सबको उपवास करना चाहिए। अंग्रेजी में छुट्टी को क्या कहते हैं? हॉलीडे। परंतु ये शब्द आया कैसे? होली डे, होली मतलब बहुत पावन, बहुत दिव्य। तो छुट्टी जो होती है वो क्यों होती है? वो पाश्चात्य देशों की संस्कृति के अनुसार वो होली डे, पावन दिवस, वो जो रविवार है वो छुट्टी का दिन मानते हैं, क्योंकि उस दिन पर वो गिरजाघर आदि जाते हैं। परंतु वो अभी होली डे तो अनहोली डे हो गया है, कोई पावन कार्य, कोई शुद्ध कार्य तो नहीं होते, छुट्टी तो केवल भोग के लिए एक दिवस माना जाता है। तो रविवार के दिन तो ऐसे खास दिन नहीं है, हर दिन भगवान के लिए है। विशेष करके वैदिक सभ्यता में एकादशी का जो दिवस है वो होली डे है, हरिवासर, हरि का दिवस, हरि का दिन है, सोमवार सोम का दिन है चंद्र का, मंगलवार मंगल का दिन है, बुधवार बुध का दिन है, गुरुवार गुरु का दिन है या बृहस्पति का, शुक्रवार शुक्र का दिन है, शनिवार शनि का दिन है, रविवार सूर्यदेव का दिन है, तो कृष्णवार कौन सा है? हर दिन कृष्णवार है और विशेष करके एकादशी ये कृष्णवार है। हरिवासर वार, ये वार जो है ये वास्तव में शब्द है वासर, उसको संक्षिप्त में कहते हैं वार, हरिवासर। तो ये हरिवार, विशेष करके ये हरिवार जो है या कृष्णवार ये एकादशी है। तो नंद महाराज ने एकादशी का पालन किया और फिर वो यमुना जी में गए द्वादशी के प्रातः काल में, ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही बल्कि स्नान करने गए। तो जब स्नान करने गए तो वहां पर क्या हुआ, यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको कल आना चाहिए। कल शाम को आइएगा, फिर हम इस रहस्य के खुलासा करेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी हम एक भजन गाएंगे, साथ साथ वृंदावन और कृष्ण लीला का दर्शन भी होगा। हरे कृष्णा।